Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان البصر موزة سامين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اگاتا ہے اس آیہ کریمہ میں اور اس سے آگے متصل حصہ جو ہے دو پہلو ایک حصہ شان قدرت کا ہے کہ اللہ کریم قادر مطلق ہیں کہ وہ پیدا فرماتے ہیں مخلوق کو تخلیق فرماتے ہیں پھر دوسرا حصہ یا دوسرا پہلو جو یہاں سے سمجھنا ہے یا سبق ہے ہمارے لیے کہ بنین و انسان کو اللہ پاک نے اس درجے کا شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ ذاتی دنیاوی ضروریات جو حیاتی ضروریات ہیں اس سے نکل کر اس ساری کارگاہ حیات کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے راہ کا تعین کر سکتا ہے ایک ذات کو مان سکتا ہے وحدانیت باری تعالیٰ تک اسے رسائی نصیب ہو سکتی ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے اب جب آپ اس پہلو پر غور فرمائیں گے تو بڑی واضح چیز سمجھ آتی ہے عہد فطرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو وقت ہے اس میں جب بات ایمان کے حوالوں سے آتی ہے اس موضوع پر بحث آتی ہے تو احکامات تو نہیں لوگوں تک رہے متروک ہو گئے اس سے لیکن وحدانیت باری تعالیٰ کا قائل ہونا ہی ایمان گردانا جاتا ہے اب اس وقت وحدانیت باری تعالیٰ تک رسائی کیسے تھی چونکہ عمومی طور پر عام آدمی تک ایک رسائی ایسی نہیں رہی تھی کہ جہاں وہ شرعی احکام اس کو پہنچتے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مخلوق میں ایسا رہا ہے کہ جس کے پاس حق رہا ہے اور آخری جب دار دنیا سے اٹھا تو وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دار دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پرچم بلند فرمایا تا تک حق موجود رہا لیکن عمومی جو حکم ہے اس پر جب بحث کی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ تک کی رسائی اب وہ رسائی کیسے تھی آپ انسانی زندگی کو دیکھیں ان پہلوؤں کو دیکھیں جو تجاوز پر ہیں جہاں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بت تراش رکھا ہے چاہے بت پرست ہے یا چاہے بت پرست نہیں ہے اگر حق پر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بت اس نے تراش رکھا ہے چاہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مانتا ہی کسی کو نہیں اس کے باوجود کسی نے کسی کی ذات میں کسی نے دولت میں کسی نے طاقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں یہ کہہ سکے کہ اس کا ماننا کسی کے حوالے سے نہیں ہے اس لیے جب انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے تو یہ بنیادی عنصر اس کے قلب میں رکھ دیا گیا ہے یہ اس کے وجود کا حصہ ہے अब जैसे ये कोई नहीं कहता कि मैं मुझे भूख नहीं होती या मुझे प्यास नहीं होती, बीमारी के बावजूद मुकम्मल खुराक न भी हो तो वजूद की ज़रूरियात पूरी तब तक नहीं होती जब तक उसे कोई खुराक मुयसर ना आए या वो खुराक ना ले। प्यास के लिए यहाँ तक भी देखा गया है कि वजूद में ऐसी बीमारी है कि बंदा पी नहीं सकता, उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है पानी की, इसकी वजूद में पानी जाए। हलक ख़राब है, हलक से पानी नहीं उतर सकता, उसे ऑपरेशन करके कोई ना कोई ऐसा निज़ाम कर दिया जाता है कि उसके मेदे तक ये चीज़ जाए। वजूद की ज़रूरत है। और कोई ये नहीं कहता कि ये भूख का होना या प्यास का होना ये कोई ऐसी बात है जो अनहोनी है, फितरी तकाजा है और सारे समझते हैं। इसी तरह ये जो मज़हब का मानना है, अल्लाह जल्ला शानू की वादनियत तक पहुंचना है, ये भी इंसान में एक फितरी हिस्सा है। जब इबादत को पैदा फरमाया है तो उसके लिए जो इंसानी मिजाज में जो चाहत जो पसंद और जो इताअत के पहलू हैं वो उसके न्याय खाना में मौजूद है। तो यहाँ जब आप देखते हैं कि दाने और गुठली ये बयान फरमाया गया, फिर बयान फरमाया गया युखरजुल हय्या मिनल मय्यत व मुखरजुल मय्यत मिनल हय्य, कि बेजान से जानदार को पैदा करना, जानदार को फिर बेजान कर देना, शान कुदरत बयान फरमाइए। ये इजहार है कुदरत कामला, लेकिन इस इजहार में एक हिस्सा ऐसा भी पिन्हा है जिसे मुखातिब फरमाया जा रहा है वो ये बात समझे कि अगर किसी को अपनी पैदाइश या इब्तदा और इंतहा का इख्तियार नहीं है वो बाकी सबकी ज़रूरियात क्या पूरी कर सकता। जो खुद मखलूक है, जिसे खुद इस पैदाइश इस आने और इस जाने के पैमानों से गुजरना है, वो किसी की क्या जरूरत पूरी कर सकता। और कुरान करीम दावत देता है गौर व फिक्र की। अब गौर व फिक्र की दावत उसे ही दी जा सकती है ना जो इस काबिल हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई नाबीना को कह रहा हो कि वो देखो फलां जगह पर क्या नजर आ रहा है, कभी नहीं देखा होगा, ना आप खुद करेंगे ना आपने कभी देखा होगा। बीना को ही कोई शायद दिखाई जाती है कि वो देखो फलां जगह पर क्या है। तो जब ये दावत दी जा रही है तो ये बुनियादी तौर पर अंसर बंदे के अंदर मौजूद है। अब कुदरत के जो पहलू, एक मरबूत निज़ाम है और हर शय में अल्लाह करीम ने एक ऐसा हिस्सा बयान तख्लीक फरमाया है कि जो अमूमी तख्लीक से हटकर है। हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ बरकत के दरख्त का बयान फरमाते हैं, हालां बीज किसी को भी ले लें वो बेजान है। असूल क्या है कि बीज को बोया जाता है, रुईदगी जमीन की जो है उसे उस बीज से फूटकर जिस किस्म है जो किस्म है उसके मुताबिक पौधा है दरख्त है क्या है उसके मुताबिक उसकी अफजाइश होती है। तो हजरत जी यहाँ सिर्फ बीज ही की मिसाल नहीं देते और बारीकी में चले जाते हैं, पीपल और बरगद के दरख्त की देते हैं, कितने बड़े दरख्त हैं। वो फरमाते हैं कि ये जो फल है बरगद का, इस फल में फिर बारीक बारीक बेशुमार दाने होते हैं जिससे ये दरख्त उगता है। लेकिन असूल क्या है कि काबिल काश्त हिस्सा ज़मीन का मिट्टी का जो इस काबिल हो वहाँ आप बीज बोते हैं, उसको नमी मिलती है, मौसम हो फिर वो फूटता है। इसे आप मिट्टी में डाल दें ये नहीं फूटेगा, बेजान बीज है, बारीक सा बीज है, और उम्र सदियों में और वजूद कितना बड़ा होता है। इसे जब कोई परिंदा खाता है और उस खाने के बाद जब वो उसका अमल जो है खाने का गुजरता है, तो उसके मेदे में इसको नरमी मिलती है। उसके बाद जहां वो बीट करता है वहां से फिर इसके अंदर ये कुव्वत होती है कि फिर जब ये मट्टी के हवाले होता है तो फूट जाता है। अब अमूमी क्या है कि बीज डालें फूटता है, लेकिन अल्लाह करीम ने यहां एक मजीद नजाकत दिखाई है कि वो कादरे मुतलक है, हर बीज को मट्टी में डालो नहीं फूटे, इसके फूटने का निजाम दे। इसी तरह हर शय का जबड़ा आप देखिएगा, नीचे वाला जबड़ा हिलता है और चबाने में जो ताकत है वो नीचे जबड़े में है, पूरा निजाम है, और उस ताकत से जबड़े जो है वो किसी शय को भी खाने में मदद मिलती है। अब इसी में आप अगर मगरमच्छ को देखें, हर शय का जबड़ा नीचे से ताकत दे रहा है और खुल रहा है और बंद हो रहा है, उसका ऊपर से खुलता है और बंद होता है, और इतनी ताकत है उसमें कि अमूमी तौर पर खूनखार जानवरों में के जबड़ों में भी इतनी ताकत नहीं है जितनी उसमें ताकत है कि इतने जोर से वो बंद करता है कि हड्डियां तोड़ के रख देता है। ये उसकी कुदरत का इजहार है, वो पाबंद नहीं है। सारी मखलूक को असूल है कि नस्ल इंसानी मर्द और औरत इन दो के मिलाप से, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इब्तिदा फरमाई पैदाइश की, उसी हिस्से को आप आकर देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा फरमाए। दुनिया में नज़्मो नस्क तख्लीक एक ऐसा खूबसूरत तरतीब है ऐसी, उसे आप देखते जाएं ये हो ही नहीं सकता आप वहदानियत बारी तक ना पहुंचे। फिर इंसान हर शय को देखते हुए एक सवाल पर जरूर जाता है, ये क्यों है, इसका सबब क्या है। इंसान की ये फितरत भी इसे वहदानियत बारी तक पहुंचा देती है, क्योंकि इसकी मजबूरी है कि फिर आखिर में कोई ऐसी ताकत माने कि जिसने सबको पैदा किया हो उसे किसने पैदा ना किया हो। तो यहां जब ये गुठली की बात आती है, अभी जमींदार जो हैं वो गंदम संभाल रहे हैं, बहुत से संभाल चुके हैं, कुछ रहते हैं, एक दाना जमीन के हवाले किया, उस खोशे में कितने दाने अल्लाह ने अता फरमा दिए। फिर न सिर्फ उसमें इजाफा हुआ बल्कि हर पैदा होने वाले दाने में फिर खसूसियत है कि हर एक को बो दो फिर खुशी पैदा होते चले जाए। फिर सिर्फ उसकी पैदाइश नहीं है, किस दाने पर किसका हिस्सा लिखा हुआ है नहीं मालूम, खाना खाने को बैठे हैं तो कोई मेहमान ऐसा आ जाए नहीं मालूम, हल चलाने वाले को कि ये जो फसल उगी है उसके हाथों निकलते बिकती बिकती बदलते हाथ जाने दुनिया के दूसरे सिरे पर जाकर किसी की खुराक का हिस्सा बन जाए। नहीं मालूम कि किस शक्ल में किसकी खुराक कब ये जा पहुंचे। अब हम कोई शय लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, अब उस बिस्किट में क्या कुछ है, कहां कहां से वो पैदा हुआ और कहां कहां से वो पहुंचा, कहां वो सारे निजाम से गुजरा और किसकी जाकर खुराक बना। फिर ये सारा निजाम इतना मरबूत है कि अपने हिस्से से जायद कोई निवाला नहीं ले सकता। حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مخلوق اپنے حصے سے ایک نوالہ اگر زائد لیتی تو یہ تو آدھی زمین بھی کھا گئی ہوتی. آپ سوچیں نا. پھر اپنے حصے سے زائد چھوڑ جاتی تو اتنا تعفن پیدا ہو جاتا کہ یہاں زندگی ویسے ہی محال ہو جاتی. تو جب یہ سارا نظام ہستی چل رہا ہے تو پھر اے بندے مومن تو تجھے کیا تڑپ ہے کہ تو شان کریمی سے نکل کر اپنی ذات کی انا میں جا پھنسے. مان کے عمل نہ ماننے والوں جیسا ہو جائے. چونکہ پہلے جو حصہ اس رکوع سے پہلا حصہ ہے اس میں مشرکین اور ان کا شرک اور اس کا انجام بیان فرمایا جائے. یہاں قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ کریم کی یہ قدرت ہے. پھر اس اظہار میں بڑی باریک ایک دانے تک کی مثال ہے. پھر اس دانے کی مثال کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی حیات کو تو دیکھیں کہ ایک قطرہ پانی. اب عمومی جو حیات ہے آپ ایک قطرے پانی میں حیات نہیں سمجھتے. اس سے اس نے کیسا کڑیل جوان پیدا فرما دیا. اس نظام حیات سے پیدا ہونے والوں میں کیسے کیسے مفکر ہیں, کیسے کیسے سائنسدان آئے, کیسے کیسے اطباء معالج آئے, رہنما پیدا ہوئے, مخلوق کی رہنمائی کا سبب. پھر اس پیدائش کے بعد جس نے اپنا آپ کو کمال سمجھا اس اسی دنیا میں وہ اپنے اس کمال کو لے کر اپنا انجام کیسا پا گئے. کسی شخص کی زیادتی اور سالوں کے بعد ایک سوال میرے اندر پیدا کر گیا اور حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ سالوں اللہ اللہ کرنے کے بعد یہ انجام ہے. تو اس سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر چلتا ہوا کوئی گرا تو اسے خراش آ جائے گی, کوئی مکان سے گرا تو کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی, بازو ٹوٹ جائے گا, کوئی پسلی ٹوٹ جائے گی, وہ بلندی سے کوئی گرا تو اس کے تو پرخچے اڑ جائیں. تو یہ جو ذکر اور اذکار اور اسباق کرتے 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 تو انجام اس کو پہنچے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ماجرا یا معاملہ کیا ہے. ایک ڈر ہے اندر, سمجھ نہیں آ رہی کیا. تو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے وہ مثال دی جہاں قرآن کریم شیطان کو مخاطب فرماتا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ. وہ تھا ہی کافر, یہ اللہ جل شانہ پریشان. اب جب تک وہ متکبر نہیں ہوا, انکار نہیں کیا, مقابل نہیں آیا, اپنی انا کا اظہار نہیں کیا, جس راہ پر چل رہا چلتا رہا. اب اللہ کریم کی ذات تو علیم ہے, وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کیا بدبخت جا کر نکلے. لیکن جیسا جا رہا تھا اس کے مطابق معاملات چلتے گئے, اخیر نہیں لگی. وہ جو نیت تھی اپنی بڑھائی کی, وہ جو کمال اپنا جان بنانا چاہتا تھا وہ انتہا کو پہنچا, ذلیل ہو, بےمان ٹھہرا, بدبخت ٹھہرا. تو مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور فرمایا میرے بیٹا ہمیشہ نیت کا خیال رکھنا. یہ جن گرنوں گرنے کی جس طرح کے گرنے کی تم بات کر رہے ہو یہ اللہ کی محبت میں نہیں محنت ہو رہی ہوتی, کمال ذاتی کو لگی ہوتی, ذاتی بزرگیاں چاہتے ہیں, سرا نہیں لگتا پھر گرتے ہیں. اس سے یہ سمجھو کہ نیت خالص ہو, ماز واسطے اللہ کے ہو, کمی بیشی وہ معاف. جہاں بنت ذاتی کوئی بننا شروع کر دے گا اس کی اخیر اچھی نہیں لگے گی. تو جب ہم ان باریکیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ जो खुद मोहताज है तखलीकी अमल का, वो बाकमाल कैसे हो सकता? जब बात कमाल की आएगी, जब बात मानने की आएगी, तो फिर जात वो होगी जो सबको पैदा फरमा रही है, जो खालिक है। बाकी कौन है इसका? फिर इसी में जो तीसरा हिस्सा या समझ आती है कि तखलीकी मराहिल जिन पर हम बात कर रहे हैं, शान कुदरत का इजहार, फिर इस पर तफक्कुर, फिर इस शान कुदरत का जो नज्म व नस्क, जो अंदाज है, क्या कमाल है। जो हिस्से रब्बे कायनात ने सदियों पहले हमें अता फरमाए, लबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नसीब हुए, सदियों की ताकीक क्या कह रही है। आप बच्चे के निजाम को देख लें, पैदाइश इस तौलीद के निजाम को देखें, क्या कहती है ताकीक सदियों की। ये भी जो फरमाया अल्लाह के हबीब ने, हक फरमाया। अब बेअमली जब आती है तो क्या होता है? हमारे नेशनल टेलीविजन जो है, एक तो जब कहा जाता है ना नेशनल, तो उससे मुराद होता है कौमी टीवी, जिससे मुराद पी टीवी होता है। लेकिन मैं इस जुमरे में कह रहा हूं जो कौमी सतह पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर देखे जाते हैं हमारे चैनल, दुनिया के बेशतर मुल्कों में देखे जाते। वहां जब हमारा मुसलमान भाई, क्योंकि हम तो नहीं किसी को कह सकते कि ये कौन है जब तक कि वो उसका इजहार ना करे, कौन है, किस दर्जे का है, अल्लाह बेहतर जानता है। जब ना मुसलमान का दावा मुसलमानी का, और जब वो ये कहे कि ये कौन से आलात हैं, ये कैसी हमारी समझदारी है, हर शय के अनुसार साइंस पर है, तो साइंस को ये नहीं समझते। मियां साइंस तो वो है, हाल की जो साइंस की इजादात है उन्हें देख लो, अपनी की हुई बात को रद्द कर जाते हैं, अपनी ताकीक का खुद इनकार कर देते हैं। उनकी हतमी बात सिर्फ वही रही है जो कुरान करीम के तहत आई है, उसमें तब्दीली नहीं देखोगे, क्यों, वो है ही हक। बाकी कितनी तहकीकें हैं, खाने की एक शय, अब देसी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, हमारे यहां घी, देसी घी, इस पर बचपन से ही एक होता है कि ये वजूद के लिए अच्छा है, कितने साल ये मना किया गया है कि जी घी नहीं खाना, क्यों, ये नुकसान देगा। अब कितने, ये चंद साल हो गए, दो चार साल, अब जोर ये दिया जाता है कि घी एक मकदार में खाओ तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर है। तो मेडिकल साइंस ही कह रही है। तो जब दावे ईमानी के साथ बंदा अपने आप को साइंस के मुताजी में समझे और हक की हकीकत को रोजे रोशन की तरह आया होते हुए न देखे, कहां खड़ा है, यहां समझे इस बात को। दुनिया मेरे अल्लाह ने असबाब से बनाई है, भाई ये जो वबा है इसी के तहत ये हिफाजती इकदाम है ना, कितने हमारे भाई हैं, कितने साथी हैं जो इस साल इमसाल इतकाफ पर मरकज में नहीं आ सके, क्यों नहीं आ सके, मना किया, क्यों मना किया, लोगों को अल्लाह के घर से दूर रखा जाए, यही हिफाजती तदबीर के तहत रश ना किया जाए, जो सबब है उसे इख्तियार किया जाए। लेकिन क्या हम सबब को कुल समझते हैं? कुल तो उसकी जात, सबब तो असूल है, दुनिया असबाब की है, सबब इख्तियार किया, लेकिन तवक्कल अल्लाह हतमी बात वो है। जिसने बीमारी को पैदा किया वही सेहत का मालिक है, जिसने हयात दी मौत भी उसी के हुक्म से है। और जब हम इतनी तरक्की, अब ये पता नहीं तरक्की अब किस मानों में ली जाए, इसके हरूफ क्या होंगे, मैं तो कम इल्म आदमी हूं, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना किसी चीज का तरक जाना, तो वो उससे उनका मुराद होता है इसमें तफुन पैदा होगा। अब पता नहीं ये वो पंजाबी की तरक्की है या उर्दू की तरक्की है कि हम साइंस को कुल समझें। साइंस है, दुनियावी उलूम है, और ये जो अशिया और मुरक्कब जुड़कर मौजद जो जिसको ईजाद करते हैं, ये क्या है? बुनियाद न हो, अकाई न हो, तो किसको पैदा कर लेंगे? ये अल्लाह की जो तखलीक है और उसके जो असूल हैं उसी के तहत जा रहे हैं, उससे बाहर कौन जा रहा है? तो हम क्यों न माने, ये तो कायनात का मालिक है भाई, हर शय उसने पैदा फरमाई है। उन असूलों के खिलाफ जोड़कर दिखाओ। इसलिए तो एक मच्छर की मिसाल भी कुरान करीम बयान फरमाता, मक्खी की बयान फरमाता। एक पर तो कोई नहीं ना बना सका सारी अकल से। तो जब इतनी बारीकियों को देखेंगे तो फिर ये क्यों ना समझ आए कि मेरी जिंदगी का महवर जो है वो कहां है। और जब ये नहीं होगा तो फिर हालात ऐसे होंगे जैसे हम भुगत रहे हैं। तो अल्लाह जल्ला शानुहु हमें माफ फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कोई खुशी नहीं है कि अपनी बुराइयां गिन के बंदा खुश हो रहा है, या अपने मुआशरे की जो बुराई है उस पर बात करती हो कि बड़ा कमाल है। नहीं, काबिल सताइश बात ये नहीं है, इससे शर्मिंदगी के पहलू मिलते हैं। और इन बातों से मुराद तजहीक नहीं है, इन बातों से मुराद दस्तक है। आओ हम होश करें। जब हम सारा मुआशरा बैठे देख रहे हैं कि कोई आए और निजाम हस्ती जो है उसे दुरुस्त करके हमारे हवाले कर दे, आखिरी इख्तियार हर बंदा समझता है कि मेरा हो, काम कोई और आकर कर दे, कैसे मुमकिन? अब अपने इस मुआशरे में, अपने मुल्क के हालात में, पूरी उम्मत के पहलुओं में आप देखते जाएं, ये जो इनहिताहत है क्या इसका सबब हमारा किरदार नहीं है? और जब रोजे माशर हिसाब होगा तो जिसका जितना किरदार है उसे जवाब ना देना होगा। और किसी से उसकी ताकत से जायद सवाल है ही नहीं। ये असूल कुरान और हदीस बयान फरमाते। तो क्या खूबसूरत पहलू है, रब्बे कायनात उसने कैसा निजाम पैदा फरमाया। फिर इस निजाम से आगे चौथा पहलू, इस्तफादे को देखें। ये जो मैंने अर्ज की, जैसे एक खोशे से, एक दाने से एक पूरा खोशा, उस सिट्टे से कितने दाने, इस्तफादा कैसे हो रहा है मखलूक, कैसे रिज्क की तकसीम, एक तांदा बंधा है जिसका जहां हिस्सा है उसको पहुंच रहा है। एक निजाम है, एक अफजाइश का एक निजाम है, मुतसिल हर शय चल रही। इस इस्तफादे को देखें। फिर ये जो हिस्सा है ना, फालिकुल हब्ब वन्नवा, ये गुठली से पैदाइश का। फिर ये जो दूसरा हिस्सा है कि युखरजुल हय्य मिनल मय्यत व मुखरजुल मय्यत मिनल हय्य, ये इब्तदा और इंतहा दोनों पर मुझे भी अशना करता है। قرآن کریم میں اتنے ایک پہلو ہیں کہ اپنی سمجھ جو ہے وہ ڈگمگا سکتی ہے, پہلو نہیں ختم ہوتا. پھر ابتدا اور انتہا, کسی دانے سے پیدا ہونے والے پودے کو لے لیں, درخت کو لے لیں, فصل کو لے لیں, کسی مقصد کو ہے. اور جب اس کی فنا آتی ہے پھر کوئی مقصد ہے. ہم جب زمین میں ہل چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فصل کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, فصل کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ جو پہلے سبزہ اگ گیا اس نے تو زمین خراب کر دی. محنت کی جائے اس پر ہل چلایا جائے, بالکل جی چلائیں گے. اب جب وہ پہلا سبزہ اکھڑتا ہے, گل سڑ جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے, چورا ہو جاتا ہے, ابتدا سبزے کی, پھر اس کی انتہا. انتہا میں کیا ہوا, وہ چورا زمین کو مزید قوت دے جاتا ہے دوسری قسم کی فصل کے لیے. تو اس ابتدا اور انتہا کو دیکھتے ہوئے جب آپ اس پہلو کو سمجھیں گے کہ وہ جو جاندار کو بے جان سے پیدا کرتا ہے, حضرت مثال جب فرماتے ہیں وہ پرندے کے انڈے کی بھی بیان فرماتے ہیں. یہ جو تحقیق ہے اسے پڑھا کریں, یہ بیانات ریکارڈڈ بھی ہیں تاریخ میں بھی الحمدللہ, اسے پڑھا کریں. اپنے اوقات کار میں ابھی آپ غور کریں نا, اللہ نے توفیق بخشی ہے اعتکاف کی الحمدللہ, ہم سارے یہاں بیٹھے دین پر بات ہو رہی ہے. دنیا رک گئی ہے کہ چل رہی ہے؟ ہوتے ہوئے دنیا میں اس بات کا ادراک کریں نا جی. اور جب ہم یہاں اس جگہ سے اٹھیں گے واپس دنیا میں جائیں گے تو دنیا تو چل ہی رہی ہوگی, ہماری وہ کیفیت اور حال جو معاذ اللہ کے لیے یکسوئی تھی, کمی بیشی آئے گی تو یہاں آئے گی. تو پھر اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ معاملات زندگی کو اسباب تک, لیکن اسے کل نہ سمجھ لیا جائے. اللہ جل شانہ کی عبادت میں وقت صرف ہو. اکثر یہ بات میں نے عرض کی ہے, شاید میرے الفاظ کمزور ہوں اور شاید اس کمزوری کے سبب یا الفاظ کا جو ربط ہے اس کی کمی بیشی کے سبب اس میں کوئی کمی بیشی محسوس کرے, لیکن یہ حقیقت میں سمجھتا ہوں. احکامات ظاہری کو جب کوئی پورا کرتا ہے یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. بے شک ہماری عبادات اس قابل نہیں ہیں جو اللہ جل شانہ کی شان ہے, اس قابل نہیں ہے. وہ قبول فرمائے, وہ غفور الرحیم ہے, معاف فرمائے, حب اللفا اسے محبوب ہے, معاف فرمانا وہ معاف فرمائے. تو کیا ہے دنیا سے جا کر سہولت ہے کیا, کس سبب؟ اللہ راضی ہو گیا, جسے اللہ راضی ہو گیا فوز و عظیم ہے. لیکن احباب گرامی, کوئی سمجھ مجھے اور لفظ کی آئے نہ آئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے قرب کو جب جانا ہو کیفیات قلبی بنا سمجھ نہیں آتی. اور جب ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو ہم مقابل دیکھتے ہیں. درس و تدریس جب بحث کرے گا اس شعبے میں, دعوت و تبلیغ کو مقابل رکھ کر بات کرے گا. اور اگر کوئی دعوت و تبلیغ میں ہے تو کیفیات قلبی کو مقابل رکھ کر بات کرے گا. یہاں مقابل نہیں ہے. اور شعبہ جات دین کے ہیں, कैफियत कल्बी शोभा नहीं है, शोभों की जान है। तो जब आप दुनिया के मामलात में वापस जाएं, अल्लाह हक हलाल कमाने की और हक इख्तियार करने की तौफीक दे, तो अपने मामूलात को ना गिरने दे। जाहिरी हिस्सों की तकमील के बाद उसी का करम है कि अपनी रजा के साथ फिर अपना कुर्ब अता फरमा दे। कमाल हमारा नहीं, ये कमाल इस राह का है। जो आकाम मिले लभाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, आपने इख्तियार फरमाए, आपने तरबियत फरमाई, तसहीह फरमाई, अल्लाह ने हम तक पहुंचने का सबब फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये कैफियत कल्बी का जो तसलसल है, ये भी कलब अथर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जब इसकी अजमत की बात होगी तो बात मेरी अजमत की नहीं है कि मैं को तकब्बर कर रहा हूं, तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। लेकिन कुर्ब इलाही का सबब वो जोड़ और वो ताल्लुक है और उससे मुंसलिक होना बैर से जो कलब अथर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चल रहा है। तो फिर इस तरबियत को जब लेकर निकलें तो फिर ऐसा ना भूल जाए कि जैसे हम चांद रात को रमजानुल मुबारक की इबादत से निकलकर महसूस करते हैं कि जो मर्जी कर ले, वो कौन सी कैफियत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ही रमजानुल मुबारक की इब्तिदा होती है शयातीन कैद होती हैं, और फिर जो रमजानुल मुबारक की तकमील होती है, शवाल चढ़ता है, तो आजादी मिदर मादर पिदर आजादी, वो तो शयातीन महसूस करते होंगे। तो उसी रोज जो हम इशा का अदा कर दें या छोड़ दें, हमने फिर क्या किया। तो ये बारीकियां, ये मौत व हयात और ये गिर्दो पेश हमा वक्त मौत व हयात का एक दायरा से देखते हुए अपना आप भी समझना और देखना है। इसलिए अल्लाह करीम फरमा रहे ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहां बह के फिरते हो। ये जो चल रहा है निजाम, ये जो दाने का फूटना है, ये जो मौत व हयात है, आज खुद तो नहीं है मियां, तो फिर कहां बह के जाते हो। इंसानी वजूद जो है, ये जो बॉडी सेल्स हैं, एक सेल्स का मरकब है, हयात में रहते हुए इस वजूद में इतनी मौत व हयात है कि सिर्फ इसी की ताकीक में लगे रहो तो जिंदगी तमाम हो जाए। 6 महीने एक सेल की हयात है, वजूद सारे सेल्स का मुरक्कब है, किस सेल की क्या पैमाना किस तरह, ये बहुत बारीकियां है। 6 महीने बाद सेल खत्म होता है, उसकी जगह दूसरा सेल ले लेता है। का मतलब है कि पूरा वजूद जो है, कौन सा सेल किस वक्त उसकी इब्तिदा और इंतहा है, लेकिन हर बॉडी सेल 6 महीने बदल रहा है। यही तो सबब है, जब सेल कमजोर आता है तो वो जगह नहीं होती है, वहां बीमारी होती है। शफा की बात आती है तो वहां जो सेल उसकी जगह ले रहे होते हैं वो ताकतवर होते हैं। बचपन से जब ऊपर आता है तो वो सेल ताकतवर आते जाते हैं, ठहर जाती है, जिंदगी एक जैसे है। जब पुख्तगी आती है, कमजोरी आती है, तो वो सेल कमजोर होते जाते हैं, आने वाला सेल जो जगह ले रहा है वो कमजोर है, तो अपना वजूद बता रहा होता है। तो मौत तो हयात की बारीकियां सामने तो हैं, अंदर कितनी। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहां बह के फिरते हो। अल्लाह जल्ला शानहू یہ ہے کیفیت اور یہ حال، ایسا عطا فرمائے کہ یہ زندگی تمام ہو جائے لیکن یہ حال ہم سے جو ہے گم نہ ہو. اور زندگی رہی تو پھر مزید گزارشات اگلے بیان میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ